कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि ये जो महाप्रभु मेरे सामने बैठे हैं एक सन्यासी के रूप में चतुर्मास में तपस्या करते हुए, क्या मैं इन्हीं को ही देखूंगा? ये जो असली गौर सुंदर थे, नदिया बिहारी थे, सच्ची नंदन थे, क्या मैं इनको नहीं देख पाऊंगा? क्या मेरा यही दुर्भाग्य रहेगा कि मैं इनको सन्यासी वेश में देखूं? तो ये सोचते सोचते और रोते रोते वो सो गए। और जब महाप्रभु ने देखा कि मेरे भक्त की क्या इच्छा है, महाप्रभु उनके सपनों में प्रवेश किए और महाप्रभु ने क्या दिखाया, अपना गौर सुंदर रूप दिखाया। और अकेले नहीं आए, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर और मुकुंद और सबके सब आए महाप्रभु के साथ और सब जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं। और यही नहीं, गोपाल भट्ट ने देखा वो स्वयं महाप्रभु के साथ उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। देखिए क्या वो सपना होगा। और उसके बाद जब गोपाल भट्ट का सपना टूटा तो उन्होंने देखा कि स्वयं महाप्रभु उनके सामने बैठे हैं और वो जोर जोर से रो रहे हैं। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और फिर क्या किया, महाप्रभु ने गोपाल भट्ट उस बालक को अपना त्रिभंग श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो जब त्रिभंग श्याम सुंदर रूप गोपाल भट्ट बालक ने महाप्रभु का देखा तो वहीं पे वो मूर्छित हो गए। फिर बाद में महाप्रभु ने उनको बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम जब बड़े होकर वृंदावन जाना और वृंदावन में रूप और सनातन से मिलना। रूप और सनातन को मैंने अपनी मनोवृत्ति दे रखी है, मैं अपने मन के भाव उनको दे रखे हैं और तुम उनको सहायता करना शास्त्रों को लिखने के लिए, और तुम्हारा ही एक शिष्य इन शास्त्रों को बांटेगा। कौन से शिष्य हैं वो? श्रीनिवास आचार्य। तो महाप्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारा शिष्य शास्त्रों को बांटेगा। इसके बाद महाप्रभु ने, हम जानते हैं भविष्यवाणी की, पृथ्वी आचे नगर आते ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मैं मोर नाम, यही भविष्यवाणी की थी कि एक सेनापति आएंगे जो मेरे नाम का प्रचार पूरे विश्व भर में करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे तो उनके कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा कि महाप्रभु यहाँ पर आए थे 48 वर्ष के लिए, तो वो पाश्चात्य देश में क्यों नहीं आए, दक्षिण भारत में भ्रमण करते रह गए, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं आए? तो श्रील प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, चैतन्य लेफ्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज फॉर मी। महाप्रभु ने पाश्चात्य देशों को मेरे लिए छोड़ा था, बड़े कॉन्फिडेंटली प्रभुपाद ने बोला। कि प्रभुपाद जान, ये इतना कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोल सकता, सीधा पूरे विश्वास के साथ। और यहाँ महाप्रभु सीधा बता रहे हैं गोपाल भट्ट को कि तुम जाओ और तुम्हारा जो शिष्य है वो मेरे रूप और सनातन ग्रंथों का प्रचार करेगा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, इनकी सेवा करो, जब ये शरीर छोड़ दे तो आप वृंदावन चले जाना। तो महाप्रभु ये कहकर फिर चले गए। गोपाल भट्ट जी ने इन बातों को हृदय में स्वीकार किया और उनके बाद जो उनके चाचा थे प्रबोधानंद सरस्वती, वो प्रखार पंडित थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। और गोपाल भट्ट बहुत ही कम आयु में काव्य, व्याकरण और शास्त्र, नीति सब में बहुत ही कुशल हो गए और किसी को भी शास्त्रों के वाद विवाद में वो हरा देते थे। और उनकी भक्ति और उनके ज्ञान का जो प्रचार था, सब लोग बहुत सुविख्यात हो गए। और अब उनको लगा कि अब समय आ गया, मैं वृंदावन जाऊं। और उनके माता पिता ने, वेंकट भट्ट ने, उनकी माँ ने उनको आज्ञा दे दी कि आप वृंदावन जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु और भक्तों के बीच में किस तरह से आदान प्रदान है। उनके माता पिता भक्त थे तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आप अपने माता पिता की सेवा करना और बाद में आप वृंदावन चले जाना। हालांकि बोला था देहांत के बाद, लेकिन माता पिता ने देखा कि बालक गोपाल इतनी तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसकी तीव्र इच्छा है, तो माता पिता ने पहले ही आज्ञा दे दी कि आप वृंदावन में जाओ और भजन करो। इसी ढंग से रघुनाथ भट्ट से महाप्रभु मिले थे तपन मिश्रा के घर, वो तपन मिश्रा के पुत्र थे वाराणसी में। तो रघुनाथ भट्ट को भी महाप्रभु ने यही आज्ञा दी थी कि आप अपने माता पिता की सेवा करना, विवाह मत करना और समय आने पर मेरे पास आ जाना। इसी ढंग से रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी महाप्रभु के पास आए थे। उनको जब वो महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था, कृष्ण ने तुम पर बहुत कृपा की है, तुम्हें नरक में जाने से बचा लिया है। जो तुम्हारे पिता थे, हालांकि हैं पुण्य आत्मा, पिता और चाचा हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, वो तो मल में पड़े कीड़े के समान है। देखिए महाप्रभु कैसे डील कर रहे हैं भक्तों। क्योंकि मल में पड़े कीड़े के समान है, क्योंकि वो अपने बहुत आसक्त हैं अपने परिवार से। बोले मल में पड़े कीड़े के समान है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। और यहाँ रघुनाथ वेंकट भट्ट को बोल गोपाल भट्ट को बोल रहे थे कि आप प्रतीक्षा करें, उनकी खूब सेवा करें, क्योंकि वो भी भक्त है। लेकिन माता पिता ने खुद आज्ञा दे दी अपने पुत्र को कि तुम जाओ वृंदावन में। तो अगर सारे परिवार में सभी भक्त हैं तो क्या प्रयास कर रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। गोपाल भट्ट रुके हुए हैं, हालांकि उनकी तीव्र इच्छा है कि अपने माता पिता की सेवा करूं। माता पिता ने देखा नहीं, बालक की तीव्र इच्छा है तो इसको वृंदावन जाने दे, इसको भक्ति करने दे। और उन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागा और भगवान के धाम में वापस गए। तो इस जंग से गोपाल भट्ट वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में आके किसके मिलते हैं, रूप और सनातन गोस्वामी जी से। वहां महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। देखिए गोपाल भट्ट जी अपने पूरे जीवन काल में वो 4 महीने के लिए जो महाप्रभु से मिले थे उसके बाद कभी नहीं मिले, उसके बाद कोई मिलना नहीं हुआ। तो 4 महीने के लिए रुके थे चैतन्य महाप्रभु, वो भी बहुत वर्षों पहले बचपन में, और महाप्रभु अभी भूले नहीं है गोपाल भट्ट को। वहां सोच रहे जगन्नाथपुरी में कि वो बालक बड़ा हो गया होगा और उसका बहुत नाम सुन रहे हैं, अपने लक्ष्य को भूल तो नहीं गया, कहीं वृंदावन गया है कि नहीं गया। तो उन्होंने एक पत्र लिखा रूप और सनातन को कि भैया गोपाल भट्ट ने रिपोर्ट किया नहीं किया आपके पास, कि अभी तक वो अपना खूब आराम से मान सम्मान मिल रहा है, मान लिया नहीं किया। पर से जैसे चिट्ठी आई रूप और सनातन को, उस जमाने में सोचिए ऐसा नहीं था ईमेल की तुरंत पहुंच गया वहां पे, एक चिट्ठी लिखती थी और व्यक्ति लेकर आता था, कितने महीनों बाद वो पहुंचता होगा आप सोचिए। तो जैसे पहुंची चिट्ठी, मैसेज पहुंचा रूप और सनातन जी के पास, तो रूप और सनातन ने दोबारा से उसका उत्तर दिया, हाँ जी उसने रिपोर्ट कर दिया है, बड़ी खुशी है उसे मिलकर, और वह हमें जब भी यहाँ पे होता है, आप जब 4 महीने वहाँ रुके थे उसका गुणगान करता रहता है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। और साथ में ये भी लिखा कि मेरे स्वप्न में गोविंद देव जी आए थे, रूप गोस्वामी जी के भी रहते गोविंद देव जी, और वो चाहते हैं कि उनकी सेवा गोपाल भट्ट करें, तो आजकल गोपाल भट्ट गोविंद देव जी की सेवा भी कर रहा है। ये लिख के चिट्ठी भेज दे। अच्छा, उसके बाद कुछ महीनों के बाद पहुंची होगी चिट्ठी वहाँ पर जगन्नाथपुरी में, फिर महाप्रभु ने चिट्ठी पहुंची, बड़े खुश हुए, अपने सारे पार्षदों को बुला लिया जो उनके आसपास के पार्षद थे, देखो वृंदावन से चिट्ठी आई है रूप गोस्वामी की, देखा अरे गोपाल भट्ट पहुंच गया है, बहुत खुशी की बात है। फिर महाप्रभु ने गोपाल भट्ट का खूब गुणगान किया। क्या किया था गोपाल भट्ट ने, बस अपने माता पिता के साथ थोड़ी सी सेवा की थी, बहुत गुणगान किया कि बहुत अच्छा बालक है, बहुत उसने सेवा की थी। और फिर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोचा कि अब गोपाल भट्ट को उन्होंने दोबारा से एक चिट्ठी लिखी और एक गिफ्ट भेजे, उपहार भेजे। क्या उपहार भेजे, अपना एक कोपिन दिया, कुछ कपड़े दिए और एक चौकी भेजी जो कि 12 इंच ऊंची थी और 10 इंच चौड़ी थी, जिसमें महाप्रभु स्वयं बैठते थे। इस चौकी के साथ वहां से कोई एक और दूत आया होगा पूरा सामान लेकर, चिट्ठी लेकर। आप सोच क्या आदान प्रदान चल रहा है, यानी कि कितनी तीव्र इच्छा होती थी भक्तों में आपस में आदान प्रदान, ददाति पति गणाति। और आजकल कितनी फैसिलिटीज हैं, कोरियर है, ईमेल है, SMS है, तुरंत क्लिक ऑफ द बटन हम एक दूसरे के पास जा सकते हैं, फ्लाइट है, ट्रेन है, फिर भी हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। हाँ, हर कोई अपने अपने व्यस्त है, लेकिन वहां देखिए कितना मुश्किल था कम्युनिकेट करना। और फिर महाप्रभु दोबारा से उसको उपहार भेज रहे हैं, एक चौकी भेज रहे हैं, अपने कुछ कपड़े भेज रहे हैं, और वहां से एक मैसेंजर आ रहा है जगन्नाथपुरी से वृंदावन, चल के आता होगा कोई, ऐसे तो है नहीं, चल के आ रहा है क्या, एक सामान उठा के, और सामान उठा के उन्होंने रूप गोस्वामी जी को दिया। फिर सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए, जगन्नाथपुरी से महाप्रभु ने कुछ उपहार भेजा है, देखा तो उसमें एक चिट्ठी भी निकली। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, रूप गोस्वामी ने पढ़ के सुनाया कि गोपाल भट्ट तुम्हारे लिए 3 आदेश है ना? पहला आदेश क्या है कि आप अनिकेत रहना, अनिकेत का अर्थ है अपना कोई घर मत बसा देना, को अपने कोई भजन कुटीर बना लिया, अपना कोई घर बसा दिया। तो जो वैराग्य का पालन कर रहे हैं, सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं या वानप्रस्थ हैं, उनको अपना घर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, सुरक्षा नहीं ढूंढनी चाहिए कि कहीं मैं सुरक्षित हो जाऊं इस संसार में, अच्छा खा के, अच्छा सोकर, अच्छी जगह में मैं सुरक्षित अनुभव करूं। अगर वो इन चीजों में सुरक्षा ढूंढ रहा है, अच्छे खाने में, अच्छे सोने में, तो भगवान पर निर्भर नहीं हो सकता। और जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको भी अनिकेत होना चाहिए कि जो उनका घर है उसको अपना घर ना समझ के भगवान का घर समझे और खूब भक्तों को निमंत्रण दें, पूरा का पूरा जो सुख सुविधाएं हैं वो भक्तों की और भगवान की सेवा में, इस ढंग से वो अनिकेत रह सकते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शंस अनिकेत रहना, कोई सुरक्षा मत ढूंढना किसी घर में, ऐसा नहीं वो घर छोड़ के आए और वृंदावन में एक अलग घर बना लिया, है ना, कोठी बना ली बढ़िया सी वृंदावन में, चलो जी हम वृंदावन निवास नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर। और दूसरी इंस्ट्रक्शन दी कि रूप और सनातन जी की पूरी सहायता करना शास्त्रों को लिखने के लिए, और तीसरी इंस्ट्रक्शन दी कि इन ग्रंथों को संकलन में सहायता नहीं देनी, इन ग्रंथों को पढ़ना। चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए, गोस्वामी जो कि प्रखार पंडित, जिन्होंने प्रबोधन संस्था से दीक्षा ली, प्रखार पंडित थे जो, संस्कृत के पंडित, व्याकरण के पंडित, वेदांत सूत्रों के पंडित, उनको चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इन शास्त्रों को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। और हम लोग कह सकते हैं हम पंडित हैं और हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है लेकिन हम इसको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन गोपाल भट्ट जी ने इन तीन आदेशों को बहुत गंभीरता से लिया और उन्हें रूप और सनातन जी का पूरा सहयोग दिया कि वो उन शास्त्रों का संकलन करें। सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर उन्होंने हरि भक्ति विलास की रचना की। हरि भक्ति विलास एक ऐसा ग्रंथ है, वैष्णव स्मृति है, जिसमें कि सब कुछ बताया गया है कि कैसे एक भक्त को रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारा वैष्णव सदाचार बताया गया है, कैसे अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, वो हरि भक्ति विलास में है। फिर उन्होंने और बहुत से ग्रंथ लिखे जिसमें एक ग्रंथ है षटप्रिया सार दीपिका, उसमें सारे संस्कार उन्होंने बताए। फिर संसार दीपिका जो सन्यासियों के लिए अलग अलग संस्कार हैं वो लिखे। फिर कृष्ण का नामृत पर उन्होंने टीका लिखी, भाष्य लिखा। इस ढंग से उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा था उनका पालन किया। फिर एक बार गोपाल भट्ट जी नेपाल में गंडकी नदी के में गए और गंडकी नदी में जब स्नान कर रहे थे, उनके हाथ में कमंडलू था, तो उस कमंडलू में जब पानी भरते थे तो क्या हो जाता था, 12 शिला आ जाती थी। उन्होंने बाहर फिर से उसको बाहर फेंक दिया, दोबारा से कमंडलू भरने लगे, फिर क्या हुआ, फिर से 12 शिला आ गए, फिर किया, फिर ऐसे आगे 3-4 बार ऐसा किया तो 12 शिला बार बार उनके कमंडल में प्रवेश कर जाते थे। तो समझ गए ये भगवान की इच्छा है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु से अभिन्न है और ये शालिग्राम शिला केवल गंडकी नदी में ही मिलती है, नेपाल में गंडकी नदी है वहीं पर ही मिलती है और उसमें तरह तरह के चिन्ह होते हैं जिससे कि जो बहुत ही कुशल भक्त हैं बता सकते हैं ये कौन सी शिला है, नारायण शिला है, नरसिंह शिला है, दामोदर शिला है। इस ढंग से 12 शिला उनके पास आ गए और 12 शिला को उन्होंने कपड़े में बांध के अपनी गर्दन में लटका के उनकी पूजा करते थे और पूरे वृंदावन में वो प्रसिद्ध हो गए क्योंकि बस 12 शिला है। तो रूप गोस्वामी जी ने जब देखा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे और रूप और सनातन गोस्वामी जी उनको अपने भाई के रूप में लेते थे और पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गए कि गोपाल भट्ट रूप और सनातन के छोटे भाई हैं। ये भक्तों में प्रेम होता था। बताया जाता है कि ये जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है ये बहुत गहरा सिद्धांत है और ये गहरा सिद्धांत हमारी खोपड़ी में प्रकाशित नहीं होता। हम कहते हैं ना सुबह सुबह प्रार्थना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित था। ये ज्ञान खोपड़ी में प्रकाशित नहीं होगा। हम लोग किसी गुरु को निचोड़ कर उसे ज्ञान नहीं निकाल सकते, भैया इनको बहुत मालूम है, किसी ढंग से मस्करी करके इनसे निकाल लो जो जो इनको मालूम है, कौन कौन से श्लोक पढ़े हैं, कहाँ कौन कौन सी रेफरेंस हैं इनके पास, कौन कौन से नोट्स हैं, निकाल लो इनसे जितना निकाल सकते हैं, है ना, किसी ना किसी ढंग से इनसे इन्फॉर्मेशन निकाल लो और मेरे को सब मालूम चल जाएगा। इससे ये हृदय मालूम हो सकता है, सूचना मिल जाए, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ये जो दिव्य ज्ञान है ये हृदय में प्रकाशित होगा, हृदय से हृदय की कड़ी है ये और ये गुरु परंपरा हृदय से। तो गोपाल भट्ट जी ने रूप और सनातन की इतनी सेवा की, उनके शिक्षा गुरु थे, ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ और ये हमें जानना है। इस ढंग से हमारे संबंध होने चाहिए, नहीं तो हम लगे रहेंगे और अपने सेल्फिश मोटिव के साथ कुछ निकालने की सोचेंगे, इनसे क्या निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भक्तों के बीच में संबंध अच्छे होंगे तब जाके हम इस गौड़िया विष्णु सिद्धांत को हृदय में अनुकूल कर पाएंगे, अन्यथा सब ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल। ये चैतन्य महाप्रभु के संकेतन आंदोलन का केंद्र बिंदु है कि मधुर वैष्णव संबंध। इसके बिना यह सिद्धांत हमारे हृदय में अनुकूल हो ही नहीं सकता। षट गोस्वामियों को देखिए, जैसे प्रयार में बताया गया है कि रूप और सनातन के साथ बैठ के वो चर्चा करते थे कृष्ण के विषय में, और इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि गोपाल भट्ट उनके भाई के रूप में माने जाते थे। तो रूप गोस्वामी ने गोपाल भट्ट को बोला कि तुम्हारी इसी शालिग्राम शिला से गोविंद देव जी प्रकट होंगे, ऐसे बोलते थे। तो एक बार नरसिंह जयंती आई, नरसिंह जयंती के पर्व में उन्होंने भगवान नरसिंह की कथा सुनी कि प्रहलाद महाराज ने बोला कि विष्णु हर स्थान पे हैं, कण कण में हैं, और जब हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को तोड़ा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो सोच ही रहे थे, इस लीला पे मेडिटेट कर रहे थे, तभी दिल्ली से एक व्यापारी आए, है ना, उस समय दिल्ली से भी लोग जाते होंगे, उस समय वृंदावन, दिल्ली से एक व्यापारी वृंदावन गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रणाम किया और बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े उन्होंने दिया, बोले स्वामी जी इसको लीजिए। तो गोपाल भट्ट जी को देकर चले गए। गोपाल भट्ट सोचे मैं क्या करूँगा इसका, मेरे को तो शिला जी हैं, छोटी छोटी शिला, ये क्या होगा। तो सोच रहे थे और बोल रहे थे भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो नरसिंह भगवान की लीला पे विचार करते करते वो सो गए, और जब सुबह उठते हैं नरसिंह जयंती के अगले दिन, तो क्या देखते हैं, अपनी 12 शिला में से एक शिला जो दामोदर शिला है उसमें से स्वयं राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। जय राधा रमन जी की। आप सबने देखे होंगे राधा रमन जी के बहुत दिव्य दर्शन, 12 इंच के हैं वो, बहुत छोटे से हैं, और राधा रमन जी ऐसे विग्रह हैं जो कि हंस रहे हैं और उनके दांत करके भी दिखाई देते हैं, और उनको देखने के लिए आपको दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है, इतने सुंदर विग्रह। और जब राधा रमन जी प्रकट हुए तो सारे के सारे गोस्वामी आ गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, और सब देख रहे थे वाह क्या चमत्कार है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हो गए भगवान। और सब तो रूप सब गोस्वामी ने देखा, सबने कहा अरे इसका इनका जो चेहरा है ये तो गोविंद जी के समान है, और इनका जो वक्षस्थल है वो गोपीनाथ जी के समान है। हम देखो गोपीनाथ जी का वक्षस्थल बहुत चौड़ा है, एकदम हैंडसम है गोपीनाथ जी बहुत, और इनके जो चरण है ये तो मदन मोहन जी के समान है। तो एक ही 12 इंच के छोटे से विग्रह में मदन मोहन जी के चरण, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और गोविंद देव जी का सुंदर चेहरा, सबके दर्शन हो रहे हैं, और ये दामोदर शिला से स्वयं प्रकट हुए। वृंदावन के जो 7 गोस्वामियों के मंदिर हैं उसमें राधा रमन जी एकमात्र ऐसे मंदिर हैं जो कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो बाकी सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया, कहते हैं जब राधा रमन जी के मंदिर आए तो उनको लगा 12 इंच के विग्रह क्या करेंगे, उसको छोड़ ही दिया। स्थूल बुद्धि के लोग हैं, उन्होंने बोला कि छोड़ो क्या है, उसको इग्नोर ही कर दिया, इसको माना ही नहीं कुछ, और राधा रमन जी वहां पे स्थापित हैं तब से। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये लीला है, और इसका नाम राधा रमन जी इनको दिया गया क्योंकि राधा रमन का अर्थ होता है जो राधा रानी को प्रसन्न करे, राधा रानी को आनंद दे। और ये उस स्थान पर प्रकट हुए जहाँ की राधा रानी का आकर्षण और राधा रानी की आसक्ति कृष्ण से बहुत बढ़ जाती है। ये वो रासलीला के स्थान के सामने प्रकट हुए जहाँ पे भगवान वसंत रासलीला में रास करते करते अप्रकट हो गए थे, और वो स्थान कहलाता है झाड़ू मंडल। देखा आपने झाड़ू मंडल, आप जब राधा रमन जी मंदिर से बाहर आते हैं यमुना के तट पे तो आप लेफ्ट लीजिए, तो बिल्कुल साथ में झाड़ू मंडल है, वहाँ पे वो जगह है वहाँ पे जहाँ के कृष्ण अप्रकट हुए थे और राधा रानी की आसक्ति कृष्ण के बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए थे, इसलिए सब गोस्वामी ने मिलकर इस विग्रह का नाम राधा रमन रखा जो राधा रानी को आनंद दे। तो एक बार आप राधा रमन जी की सेवा में पूर्ण रूप से लग्न हो गए गोपाल भट्ट जी, तो गोपाल भट्ट जी जब राधा रमन की सेवा कर रहे थे तो उनको लगा कि मेरे पिताजी ने और मैंने हमने वचन लिया था कि हम आजीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे, अब मैं राधा रमन जी की सेवा कर रहा हूँ तो मैं कहीं भटक तो नहीं गया, ऐसे सोच ही रहे थे और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने क्या देखा, जो राधा रमन जी हैं उनके सामने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा दिखाया कि उनमें और श्याम सुंदर कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कोई पूछ सकता है राधा रमन जी के साथ राधा रानी तो है नहीं, और गौड़िया वैष्णव बिना राधा रानी के कृष्ण की अर्चना करते नहीं, तो राधा रानी कहां है? राधा रमन जी के विग्रह में। तो राधा रमन जी के विग्रह के साथ ही आपने देखा होगा एक सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर एक छाता है और सिंहासन के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, सोने की प्लेट। वो इंगित करती है श्रीमती राधा रानी को, तो वो राधा रानी को इंगित करती है, वो राधा रानी है और ये राधा रमन जी है। और गोपाल भट्ट जी ने ऐसे भ्रमण करते हुए उत्तरी भारत में एक ब्राह्मण के घर गए थे, तो उस ब्राह्मण के घर में रुके तो उस ब्राह्मण के एक छोटा सा पुत्र था। तो गोपाल भट्ट जी को उस ब्राह्मण ने बोला कि आप मेरे इस पुत्र को ले जाइए, तो अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो अपने आप इसको मैं भेज दूंगा। तो गोपाल भट्ट जी वापस आ गए और वृंदावन में राधा रमन जी की सेवा कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बार उनके सामने एक 16-17 साल का लड़का खड़ा हुआ है। वो बोला मैं उसी ब्राह्मण का पुत्र हूँ, अपने जीवन को समर्पित करने आया हूँ। तो फिर उनको दीक्षा दी गोपाल भट्ट जी ने और उनका नाम पड़ा गोपीनाथ पुजारी। और फिर उनको राधा रमन जी का विग्रह देखकर गोपाल भट्ट जी भ्रमण करने लगे और राधा कुंड में आकर निवास करने लगे। तो राधा कुंड में वो लगभग 45 वर्ष रहे और कहा जाता है कि कृष्ण लीला में वो अनंग मंजरी हैं और ये भी बताया जाता है कि वो कुंड मंजरी भी हैं। तो गोपाल भट्ट जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि कितनी प्रगाढ़ता थी उनके अंदर राधा रमन जी की सेवा करने के लिए, शालिग्राम शीला जी की और चैतन्य महाप्रभु की, और उनकी भक्ति से भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उनके स्वप्न में आए, उनको अपना पूरा पंच तत्व के साथ संकीर्तन लीला का दर्शन कराए और दामोदर शीला से प्रकट हो गए। तो गोपाल भट्ट जी भक्ति आकर्षक थे, भक्ति कर्षण, यानी कि उन्होंने अपनी भक्ति से सर्व आकर्षक कृष्ण को भी आकर्षित कर लिया। कृष्ण शब्द कर्षण से आता है, यानी कि जो आकर्षित कर सके, और सर्व आकर्षक कृष्ण एक भक्त की भक्ति से आकर्षित होते हैं। तो गोपाल भट्ट जी के अंदर इतनी प्रगाढ़ इच्छा थी भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, कि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी प्रगाढ़ इच्छा से शालिग्राम शिला से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, शालिग्राम शिला और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसी ढंग से कली काले कृष्ण नाम रूपी अवतार, भगवान श्री कृष्ण कली काल में नाम के रूप में प्रकट होते हैं। अगर कोई साधक दृढ़ इच्छा रखे कि हाँ भगवान इसी नाम में आपका रूप है, गुण है और लीलाएं हैं, तो क्या हम नाम का जप करके राधा रमन जी के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते? जब ये राधा रमन एक दामोदर शिला से प्रकट हो सकते अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, तो अगर हम प्रगाढ़ इच्छा करें तो क्या राधा रमन जी इस हरि नाम से प्रकट नहीं हो सकते? आप देखना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे, आप हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण और देखा उसी तुलसी की पीठ से खाट से सामने राधा रमन जी के दर्शन हो गए, हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान के रूप के दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत उत्साह से और दृढ़ इच्छा के साथ हमें भगवान के नाम का जप करना होगा। ये जो भाव है ये बहुत ही चीपली हम इसको अनुकूल नहीं कर सकते। इस भाव को हम अनुकूल कर सकते हैं इन्हीं गुरुजनों के द्वारा दिए हुए भक्ति के नियमों का हम सख्ती से पालन करके। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम जप करते जाएंगे तो ये चर्निंग के समान है। जैसे आप दूध में वो उसको चर्न करने के लिए क्या करते थे, वो लकड़ी का जो होता था, आजकल तो सब मिक्सी यूज़ करते हैं, मधारी, हाँ मधारी का किया होगा किसी ने यूज़ पहले, है ना, दही सी होती या मिल्क लेकर उसको करते रहे। तो अगर कोई कर रहा है तो क्या लगेगा शुरू शुरू में, बोलो करो, कर रहे हैं, अरे प्रभु कुछ नहीं हो रहा, अरे करो प्रभु करो, नहीं हो रहा प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, करो करो और करो, मधानी करते रहेंगे, अरे थक के कुछ नहीं हो रहा, करिए और करिए, करते रहेंगे तो क्या होगा, उस दूध को मधानी से करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक लंप सा बन जाता है, वो क्या होता है, मक्खन, और उस मक्खन को पिघला के क्या बनाओ, घी, और उस घी से क्या करो, यज्ञ करो, भगवान के लिए शुद्ध स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। तो समय लगता है, प्रयास करना, उत्साह से हमें लगे रहना है। कम से कम बताते हैं 25 से 30 मिनट लगते थे उसको मदारी से, आजकल 2 मिनट में मिक्सी में डाला किया और जो हो गया बन गया। इसलिए इस इंस्टेंट जमाने में हमारे पास पेशेंस नहीं है, है ना, हरे कृष्ण इतने साल हो गए कुछ हो ही नहीं रहा, करो और चर्निंग करो, हम बीच में थक जाते हैं, हार जाते हैं, नहीं करो चरणिंग। निश्चित रूप से जब आचार्यगण बता रहे हैं कि नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, भगवान का नाम रूप गुण और लीला, इसके मोहन रूप वो बड़े उत्साह से बताते हैं कि इसी बीट बैग में पूरा का पूरा गोलक धाम है, सब कुछ है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम सोचते हैं क्या है, भार हो गया हमारे हाथ में ना। जैसे तृणामृत को भगवान ने उठाया था, भगवान को उठा के जा रहा था तो भगवान उसे गले में लटके हुए हैं, तो धीरे धीरे लगा क्या इतना बड़ा भारी चीज आ गया मेरे ऊपर। तो हम इसी ढंग से बीट बैग लटकाते हैं, मतलब बहुत भारी है ये। और तृणामृत अब फंस गया था, इसलिए हम फंस गए, उठा के इसको नीचे रख देते हैं। तो वो तृणामृत जैसे लगता है हमें, क्योंकि रुचि नहीं है हमारी। लेकिन अगर हम उत्साहपूर्वक लगे रहें, पेशेंस धैर्य रखें, उत्साह निश्चय धैर्य, और ये चर्निंग करते रहे, इसको हम चर्निंग ना करके हम बोले कोई मिक्सी दो इंस्टेंट कर करके गोपी भाव आ जाए, है ना, सीधा भगवान के दर्शन हो जाए, तो भगवान के दर्शन सीधा नहीं होंगे ऐसे, भगवान की लीला में सीधा से प्रवेश नहीं कर जाएंगे, मिक्सर में डाल के अपने को घुमा दे और भाव को डाल दो अंदर, ऐसा नहीं है। प्रयास करने पड़ेंगे, शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपना, उसके लिए लगातार लगे रहे, ये प्रोसेस में बहुत शक्ति है। तो हरि नाम में ही का हम सही ढंग से चरणिंग करेंगे, जप करेंगे, हरि नाम से ही हमें भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान के लीलाओं के दर्शन होंगे। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से ये हम हृदय से प्रार्थना करें कि उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसकी एक बूंद हमें दे दें, और जो उनके अंदर प्रगाढ़ इच्छा थी भगवान को प्रसन्न करने की, वो इच्छा हमारे अंदर भी प्रकट हो, और उसी धैर्य के साथ हम लगे रहें। धैर्य रखना ही भक्ति में शरणागति का लक्षण है। तो हम अपने आप को हम पूर्ण से शरणागत ग्रहण करके और धैर्य और उत्साह से भक्ति करते रहें, निश्चित रूप से हम इसी जीवन काल में इस चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए विशेष उपहार को स्वीकार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभावती महामहोत्सव की, श्री राधा रमन जी की, हृदय गौर प्रेमानंदे।